जय राधमा भव कुंज बिहारी।
यह प्रवचन भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 5 पर श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा मुंबई में दिया गया।
जय राधमा भव कुंज बिहारी। गोपी जाना बाला भाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
गीता के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़कर सुनाएंगे। यज्ञ दाना तपा कर्म न्या त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पवनानि मनीषिणम। यज्ञ दान तथा तपस्या कि कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ये उपदेश कौन दे रहा है? हाँ, परम भगवान। परम भगवान ये उपदेश दे रहे हैं किसे? हाँ, अर्जुन को। यही उपदेश भगवान ने सबसे पहले दिया था सूर्य के देवता वेवास्वान को। वही उपदेश आस्ते आस्ते महाराज इक्ष्वाकु तक पहुंचा। वही ज्ञान भगवान ने फिर से दिया अर्जुन को। किस लिए? आपके और हमारी भलाई के लिए। अज्ञान व्यक्ति कहेगा अर्जुन की अज्ञानता को दूर करने के लिए, नहीं, अर्जुन तो भगवान के सनातन साथी हैं। ये उपदेश भगवान ने दिया है आपके और हमारी अज्ञानता को दूर करने के लिए। दूसरे शब्दों में हमें इस ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। अगर हम मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें गीता का के संदेश का उपयोग जरूर करना ही चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि दिल्ली मंदिर के उद्घाटन के समय हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, वो जो उन्होंने कहा ये बड़ी खुशी की बात। इसलिए क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं क्या, सर्वा धर्मां परित्यज मामेकं शरणं व्रज, सब धर्म को छोड़कर मेरे शरणागत हो जाओ। और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो महात्मा है वो भी इसका लाभ उठाते हैं। तो मान लो कि आपके इस इलाके का नाम है मीरा रोड, मान लो कि मीरा जी तो भगवान की बहुत प्रसिद्ध भक्त थी, तो शायद इस इलाके के सब निवासी भी भगवान कृष्ण के बड़े प्रसिद्ध भक्त हों। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो महात्मा हैं वो भी अपने आप को शुद्ध बनाते हैं इस यज्ञ दान तपस्या का उपयोग करके। यज्ञ दान और तपस्या भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, सहा यज्ञ प्रजा श्रेष्ठवा पुरोवचा प्रजावती, कि जब सृष्टि का निर्माण किया भगवान ने तो उन्होंने लोगों से कहा तुम प्रसन्न रहो, खुशी प्राप्त करो यज्ञ के माध्यम के द्वारा। दूसरे शब्द में भगवान ने कहा सबसे यज्ञ करो। और हर युग में अलग अलग यज्ञ के साधन का उपयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार 4 मुख्य युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, आगे द्वापर युग और कलि युग। तो कहा गया है कि कलि युग में क्या है यज्ञ का साधन? हरि नाम यज्ञ। सतयुग में लोग भगवान का चिंतन करते थे, 60,000 साल तक संभव हो सकता था। जैसे वाल्मीकि जी ने 60,000 साल तक भगवान का चिंतन किया। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे जिसमें हजारों ब्राह्मणों की आवश्यकता रहती थी। द्वापर युग में भेंट देते थे भगवान के मंदिरों में। पर इस कलयुग में कहा गया है कि हरि के नाम के उच्चारण के द्वारा आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते हो। भगवान ये कह रहे हैं कि यज्ञ किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, दान किसी को नहीं छोड़ना चाहिए और तपस्या किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे तो महात्मा क्यों ना हो। जैसे कि भगवत का उपदेश एक आत्मज्ञानी सुखदेव गोस्वामी जी ने दिया परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण लड़के ने श्राप दिया था, लड़के का नाम था श्रृंगी। एक दिन जब परीक्षित महाराज जंगल में थे, उन्हें प्यास लगी, पानी की तलाश में वो एक ऋषि की झोपड़ी में पहुंचे, कुटिया में। ऋषि भगवान का चिंतन कर रहा था तो उसने राजा की तरफ ध्यान नहीं दिया। वैसे तो देखा जाए परीक्षित महाराज राजा भी थे और ऋषि भी थे, साधारण राजा नहीं थे, आजकल के राजनीतिक नेताओं के समान नहीं थे। पर भगवान की इच्छा थी कि उन्हें श्राप दिया जाए, तो उन्होंने वैसा ही कार्य किया। क्रोधित होते हुए एक मरे हुए सांप को देखा, जैसे कुटिया से निकल रहे थे, सांप को लेकर उन्होंने चढ़ा दिया इस श्रृंगी के पिता के गले में हार के रूप में। जब श्रृंगी को पता लगा, श्रृंगी कुटिया के बाहर खेल रहा था, उसने देखा कि कुटिया से निकलकर कोई जा रहा है, तो कुटिया के अंदर आया देखने के लिए कि ये व्यक्ति अंदर क्या कर रहा था। तो उसने देखा पिता के गले में एक मरा हुआ सांप कोई हार के रूप में चढ़ाकर चले गया है। लड़का भागा उस राजा के पीछे और पूछा, क्या तुमने ये किया है, मेरे पिता का अपमान? तो परीक्षित महाराज ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें श्राप देता हूं, क्या साधन के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन दिनों में ब्राह्मणों में ये शक्ति थी श्राप देने की, पर आज के ब्राह्मणों में ये शक्ति नहीं है। तो आप प्रयास भी मत करना, अगर आपका कोई दुश्मन हो और आप कहोगे मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 7 दिन में तुम्हारा देहांत हो जाएगा। प्राचीन समय में तो जब अग्नि यज्ञ का समय होता था, आजकल तो आप माचिस या लाइटर का उपयोग करते हो हाँ यज्ञ में आग लगाने के लिए, पर हमारे प्राचीन समय के ब्राह्मण मंत्रियों के उच्चारण से ही अग्नि में आग पैदा कर देते थे। तो आज की प्रजा में वो शक्ति नहीं है। खैर, परीक्षित महाराज घबराए नहीं, उन्होंने अपने अंत की तैयारी की। और सुखदेव गोस्वामी जो कि आत्मज्ञानी पुरुष थे, व्यास देव जी के पुत्र, उन्होंने भगवत सुनाया। तो ये उदाहरण हमने इसलिए दिया कि इधर सुखदेव गोस्वामी आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं, जब भी पवित्रता के लिए उन्होंने भागवत सुनाया और परीक्षित महाराज ने भागवत सुना। तो यज्ञ हमें किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो हरि नाम यज्ञ है बहुत ही सरल है। उदाहरण के लिए समझो, आप कहो नहीं नहीं हम जो भगवान का चिंतन करेंगे जैसे लोग सतयुग में करते थे, तो हम आपको कहते हैं चलो प्रयास करो। कहां जाओगे चिंतन करने के लिए? लोनावला। अभी तो लोनावला में भी सब हॉलिडे रिसोर्ट सब बन गया है ना, कहां जाओगे? कोई एकांत के स्थान में कोई है? कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं है। फिर आप कहोगे नहीं नहीं हम तो त्रेता युग में जो यज्ञ होता था उसका पालन करेंगे। तो त्रेत युग में यज्ञ करते समय सबसे पहले तो शुद्ध ब्राह्मणों की आवश्यकता होनी चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण का क्या अर्थ? जिसमें ब्राह्मण के गुण हो, ये नहीं कि हमने इसको एक पेशा के रूप में अपना लिया है। और उन त्रेत युग के यज्ञों में बड़ी कीमती वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, आज कहाँ है वो आर्थिक सुविधा। तो इस कलयुग के यज्ञ का साधन क्या है? ये हरे नाम का उच्चारण। भक्ति ठाकुर भक्ति विनोद जी एक बड़े महान संत थे। ठाकुर भक्ति विनोद हमारी परंपरा में भौतिक दृष्टि से तो वो आप जैसे गृहस्थ थे, पर वो चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति माने जाते हैं। आए थे इस पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु जी की शुद्ध संत शिक्षा की स्थापना करने के लिए। भौतिक दृष्टि से अंग्रेज सरकार के पास मैजिस्ट्रेट की नौकरी कर रहे थे, पर साथ में वो भक्त भी थे और उन्होंने अनेक रचनाएं की। तो एक रचना में वो कहते हैं, जीव जागो गोरा चंद बोले, कोत नित जाओ माया पीछा चीर खोले। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी, शायद आप सब चैतन्य महाप्रभु जी से तो परिचित हो, हाँ हो कि नहीं? कौन है चैतन्य महाप्रभु? स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण नहे आनिया, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे आनिया। आप यहाँ देख रहे हो, आपके सामने समक्ष गौणिताई जी की मूर्तियां हैं। गौणिताई का मतलब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी। जिस प्रकार जैसे इस समय अंधेरा है, पर आप अंधेरेपन को दूर कर रहे हो कैसे? बिजली के सहयोग से। हाँ, अनेक बल्ब लगे हुए हैं, पर सब जो मान लो लाखों सूर्य और लाखों चंद्रमा को आप उनकी रोशनी को इकट्ठा कर लो तो कुछ अंधेरापन दिखेगा? तो उसी प्रकार कहा गया है कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद जी की शरण ले तो उसमें कोई अज्ञानता नहीं रहेगी, अंधेरापन नहीं रहेगा। और चैतन्य महाप्रभु जी को सब अवतारों में सबसे दया दयालु माना जाता है। और वो आए हैं किस लिए? मीरा रोड के पतित व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए, आप सबका उद्धार करने के लिए, हम सबका। तो इस प्रातः में ठाकुर भक्तिनो जी कहते हैं, हे जीवात्मा तुम जागो, अपनी रोग पीड़ा की जो बीमारी है उसे दूर करने के लिए ये हरि नाम की दवाई लो। आप कहोगे स्वामी जी हमें तो कोई पीड़ा नहीं है, हम तो ये भक्ति नंद हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने कहा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। भौतिक दृष्टि से स्वास्थ्य बेशक अच्छा हो, पर हम सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के प्रभाव में हैं, सच बात है। और इन अनर्थ के प्रभाव में रहने के कारण आध्यात्मिक जागृति नहीं आती। साधुओं की संगत में ये जागृति पैदा होती है और बढ़ती है। जैसे कि आप सब इस मंदिर में आते हो, अवश्य ही हमारे इन कार्यक्रमों में भी आते होंगे, और शायद इस सभा में भी आप में से कई हो जो पहली या दूसरी बार आ रहे हो। और आप देखोगे कि साधु संगत प्राप्त करने से आध्यात्मिक भावना बढ़ती है, सच बात है। और अगर आप साधु संगत का लाभ उठाते जाओ तो अवश्य ही आप भी आध्यात्मिक शिक्षा को अपनाओगे। इसीलिए संतों ने कहा है, लाभ मात्र एक मिनट के एक सेकंड के 14वें हिस्से के लिए भी अगर आपको शुद्ध भक्त की संगत मिल जाए तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हो, जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हो और इस शिक्षा के आधार पर चल सकते हो। तो कहते हैं ठाकुर भक्तिदेव जी कि ये हरि नाम को अपनाओ, ये हरि नाम को अपनाने के द्वारा आपकी जो रोग पीड़ा है ये दूर होगी। और ये हरि नाम जो है कहां से आ रहा है? अमेरिका से? हाँ, कहाँ? ग्लोक वृंदावन से, अमेरिका से नहीं। तो कहते हैं हरे नाम को अपनाओ। एक और रचना में कहते हैं, सुख में या दुख में, हर स्थिति में हरे नाम को जरूर अपनाओ। अक्सर जब सुख की स्थिति में हम होते हैं तो हम हरे नाम का नहीं सोचते, और जब दुख की स्थिति में हो तो भगवान की शरणागत ले लेते हैं। पर वो कहते हैं सुख में या दुख में हर स्थिति में ये हरे नाम का उच्चारण करो, और भूलो मत कि अंत किसी से में भी आ सकता है। तो अगर तुमने ऋषिकेश नंद की सेवा नहीं की तो ये जीवन बेकार माना जाएगा। इसीलिए एक बड़े प्रसिद्ध संत नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, मनुष्य जन्म तो मैंने प्राप्त कर लिया, पर राधा कृष्णा का भजन नहीं किया तो मैं जानबूझकर जहर पी रहा हूं। तो आज समस्या समाज की यह है कि लोग जहर पी रहे हैं, और जब हम उनसे विनती करते हैं जहर मत पीजिएगा अमृत पीजिएगा, क्या कहते हैं? हमें मत डिस्टर्ब करो, अभी समय नहीं है। अमृत पीने का समय आएगा, कब? बूढ़ी उम्र में। कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि आप बूढ़ी आयु तक जियोगे? चाहे आप किसी इंश्योरेंस कंपनी का बीमा खरीद लो, कोई आपको ये नहीं कहेगी यकीन के साथ और 40 साल आपकी मृत्यु नहीं होगी। आपके डॉक्टर बेशक आपको कह दें आपको खुश रखने के लिए, पर यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता। इसीलिए संतों ने कहा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसका दुरुपयोग मत करो, पर इसका सदुपयोग करो। दुरुपयोग का अर्थ है पशु के समान उपयोग करना इंद्र तृप्ति के कार्य के लिए। सदुपयोग का अर्थ है शास्त्र पर आधारित इसका उपयोग करना भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने का ये अर्थ नहीं कि आपको घर छोड़ने की आवश्यकता है या धंधा छोड़ने की आवश्यकता है, नहीं। कई बार हमारे भारतीय भाई बहन सोचते हैं कि अगर हम आध्यात्मिकता में रुचि लेंगे तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा, धंधा छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, बाल काटने पड़ेंगे। नहीं, जिस क्षेत्र में महाप्रभु जी की असीम दया के कारण जिस स्थिति में आप हो उसी स्थान में रहते हुए आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। कैसे? ये हरे नाम के जाप के द्वारा। हर व्यक्ति इसको अपना सकता है। भारत में तो आप सबका भाग्य है कि आप बचपन से ही हरि नाम की महिमा सुनते आए हो, पर अफसोस की बात है सुनते हुए भी हम इसका लाभ नहीं उठाते। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ जरूर करो, यज्ञ को मत छोड़ो। तो चाहे आप जवान हो या बूढ़े हो, पुरुष स्त्री में पुरुष हो या स्त्री हो, नौजवान हो या बूढ़े हो, यज्ञ को नहीं भूलो, यज्ञ जरूर कीजिएगा। और जैसे हम कह चुके हैं इस कलयुग की यज्ञ क्या है? ये हरि नाम को अपनाना। आगे भगवान कहते हैं दान, दान भी कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, दान भी देना चाहिए। पर दान किस कार्य के लिए? दान भी जब हम दें बड़े सावधानी से देना चाहिए, ठीक स्थान के लिए। जैसे कि हमने अभी इस संस्था का एक कार्य है हर जगह मंदिर बनाना। जैसे एक व्यापारी वो सुबह से रात यही सोचता है कहाँ अभी नई फैक्ट्री बनाऊं, है ना, इतना धंधा कर लिया अभी और धंधा बढ़ाने का है। तो एक के बाद एक फैक्ट्री खोलता है, नए दफ्तर खोलता है। तो भगवान के भक्तों की इच्छा ये रहती है हर स्थान में भगवान के मंदिर खोले जाएं। क्यों? क्योंकि मंदिर खुलेंगे, हजारों लोग आएंगे भगवान के विग्रह का दर्शन लेने के लिए, भगवान का संदेश सुनने के लिए, भगवान के कीर्तन में नाचने के लिए, और इसके द्वारा अपने अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाएंगे। जैसे कि आप सबने शायद राधा रास बिहारी जी के मंदिर का दर्शन तो शायद प्राप्त किया होगा। हाँ, सबने देखा हुआ है जू का मंदिर। तो ये तो मंदिर अभी खुले हुए इसे लगभग 20 साल हो गए ये सब, पर हमें पता है कि ये मंदिर बनने से पहले उसी स्थान में एक टिन के शेड का मंदिर था, कच्चा मंदिर, आपकी ये मीरा रोड के मंदिर से भी ज्यादा कच्चा। तो उस समय जब राधा रास बिहारी जी की मूर्तियां थी वहां, तो आते थे 20-30-40 लोग, शाम को आरती में होते थे 15-20 लोग मुझे याद है। अब मंदिर जब बन गया तो हजारों लोग आ रहे हैं। यही हमने बैंगलोर में भी अनुभव किया। इस संस्था में एक बहुत बड़ा मंदिर बैंगलोर में स्थापित हुआ है पिछले साल। जब से वो मंदिर खुला है हजारों लोग आते हैं। हमने दिल्ली में भी यही देखा पिछले 2 हफ्तों में, हजारों लोग रोज आ रहे हैं दर्शन के लिए, पर पहले इतने लोग नहीं आते थे। तो इसी प्रकार आपके मीरा रोड में भी जब आपका बड़ा राधा गिरधारी जी का बड़ा महल बन जाएगा तो पूरे मुंबई के लोग आएंगे यहाँ दर्शन प्राप्त करने। तो ये सब कैसे हो पाएगा? दान के द्वारा। नहीं, भगवान कह रहे हैं दान, यज्ञ दान तथा तपस्या। तो लोग दान देंगे लोग, अगर दान मांगने को ही जाएगा तो आप लोग को या दान देना पड़ेगा या दान मांगने जाना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर या तो दान दो या दान मांगने जाओ। और लोग दान देंगे किस लिए? भगवान का महल बनाने के लिए। तो दान भी हमें देना चाहिए। और अगर आप आर्थिक रूप से दान नहीं दे सकते तो इस ज्ञान का दान दीजिएगा। ज्ञान का दान देने के लिए तो कोई पैसे की आवश्यकता नहीं। आप कहोगे हम क्या दान दें, जिसे विजय भी आप मिलो। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, झाड़े दाखो ताहे को कृष्ण उपदेश। जिसे भी आप मिलो, दफ्तर में बाजार जाते हुए पड़ोसी को ये कहो क्या, कृष्ण भगवान के शरणागत हो जाओ। जिसे भी आप मिलो उसे कहो भगवान का नाम लीजिएगा, ये असली सुख आनंद का साधन। तो ये दान तो कोई भी दे सकता है, सच बात है। हाँ, ये दान देने के लिए ना तो आपको PhD डिग्री चाहिए, ना एक बड़ी मोटर चाहिए, ना खूबसूरत शरीर चाहिए। कोई भी व्यक्ति दे सकता है ये दान। तो दान देना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं तपस्या। तो तपस्या से भी हमें डरना नहीं चाहिए। क्या है इस कलयुग में तपस्या का क्या अर्थ? तपस्या का अर्थ है कि एक ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप गलत कार्यों को छोड़ दो। ऐसे देखा जाए तपस्या किसी, हाँ हम सबको करनी पड़ती है। आजकल तो किसी शहर में अब रहने जाओ वो एक रूप से तपस्या है, क्योंकि इतना जहर है हवा में। तो भगवान कहते हैं जब भगवान यहाँ तपस्या का उपयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ है दिव्य तपस्या। जैसे कि भागवत के 5वें स्कंध में हम भगवान ऋषभदेव जी की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो भगवान ऋषभदेव जी परम भगवान के अवतार हैं, जिनके 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भारत महाराज। और पूरे भारत आपके आपके देश को पहले भारत, पहले तो पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष बुलाया जाता था। तो भगवान ऋषभदेव के 100 बेटे थे। तो आजकल तो हम जब औलाद पैदा करते हैं हम यही सोचते हैं क्या शिक्षा दे दो, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, ठीक है कॉलेज में 5 लाख रुपए जबरदस्ती दान दे देंगे दाखिला लेने के लिए। और जब इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और अगर आर्थिक सुविधा हो तो हर माता पिता चाहते हैं क्या हमारा बेटा अमेरिका जाए, है ना। जैसे आप अमेरिका जाओ, लगभग हर खानदान का भारत में अमेरिका में कोई ना कोई तो है। तो हम सोचते हैं कि हमें अपनी औलाद को शिक्षा देनी चाहिए, ज्यादा धन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में। पर भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं पिता नहीं बनो, माता नहीं बनो, गुरु नहीं बनो जब तक तुम अपनी औलाद को, शिष्य को भगवान के धाम में लौटने की शिक्षा नहीं दे सको। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी औलाद को, शिष्य को जो हमारे पर निर्भर हैं, उन्हें ये दिव्य शिक्षा दें जिनके द्वारा वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो भगवान ऋषभदेव जी अपने 100 पुत्रों को एक ब्राह्मणों की सभा में उपदेश दे रहे थे। जैसे कि इस समय एक आध्यात्मिक चर्चा हो रही है तो एक ब्राह्मणों की सभा हो रही थी जिनमें कि उनके 100 बेटे भी उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा नाहं देह देह बाजम लोके कस्तम कामम अर्थवित भूजम ये तपो दिव्यम पुत्र ये न सत्वम श्री रस्माद ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ऋषभदेव जी ने कहा ये मेरे प्रिय पुत्र, कुत्ते और बिल्ली और पशुओं के समान जीवन का उपयोग मत करो। क्यों? पशु तो केवल इंद्रिय तृप्ति का ही सोचते हैं। जैसे कि अगर आपको पता लगे आगे खतरा है तो आप उस रास्ते से नहीं जाओगे, सच बात है। पर पशु को कत्ल खाने के सामने अगर भोग विलास का अवसर प्राप्त हो जाए, उसका लाभ उठा लेगा, ये भूल जाएगा कि थोड़े मिनटों में उसका अंत आने वाला है। ये है पशुओं की बुद्धि। तो ऋषभदेव जी ने कहा कि पशुओं के समान ये जीवन मत बिताओ। पशुओं की बुद्धि कम है, जैसे कि आपके देश में और सारे विश्व में सरकार जब कानून भी बनाती है किसके लिए? पशुओं के लिए नहीं। पशुओं का व्यवहार कर लेते हैं कभी पार्लियामेंट में मारा मारी, पर कानून बनाते हैं वो मानव समाज के लिए, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक उपदेश है ये भी मानव समाज के लिए है। तो कहते हैं तपो देवियम पुत्र का, तपस्या करो, पर किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। तो भग और इस तपस्या के बदले में आपको मिलेगा क्या? आजकल तो हर व्यक्ति यही जानना चाहता है हमें मिलेगा क्या। अगर आप किसी मित्र को निमंत्रण दो चलो हरे कृष्णा मंदिर दर्शन के लिए, तो आपसे क्या पूछते हैं? तुम्हें क्या मिलता है वहां जाने से? कोई बिजनेस कॉन्टैक्ट, कोई सौदा वगैरह मिलता है? हाँ मिलता है तो फिर हम भी जाएंगे, ठीक है, सच बात है। आपके मित्र पूछते हैं फिर कहते हैं हाँ जरूर इसने पैसा कमाया होगा इसलिए वो ये वहाँ जाता है, वहाँ अमेरिका से पैसा आता है उस संस्था में तो जरूर वहाँ पैसा मिलता होगा इसलिए वो जाते हैं। तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या मिलेगा इसके बदले में। तो इसका उत्तर ऋषभदेव जी दे रहे हैं, कह रहे हैं तपो देवियम पुत्र का, इस तपस्या के बदले में आपको खुशी मिलेगी। तो आप कहोगे स्वामी जी आपने पहले क्यों नहीं कह दिया आप खुशी मिलेगी? तो भगवान कह रहे हैं कि इस तपस्या के बदले में खुशी मिलेगी और ये खुशी बढ़ते ही जाएगी, घटेगी नहीं। भौतिक स्थिति में तो अगर खुशी प्राप्त भी हो तो थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाती है, सच बात है। और मृत्यु के साथ तो सब कुछ ही समाप्त हो जाता है। अब बिरला हो टाटा हो, जब मृत्यु जब अंत आता है तो उसके बाद सब समाप्त हो जाता है। इसलिए बाइबल में कहा गया है तो मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। हम ये भूल जाते हैं, हम ये सुनना नहीं चाहते। चाहे अब ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, पारसी हो, अंत में तो मिट्टी में ही मिल जाओगे। हिंदू लोग मृत्यु के बाद शरीर को जला देते हैं, ईसाई लोग दबा देते हैं, हाँ चींटियां आके खा लेती हैं बाद में, पारसी लोग कुएं में फेंकते हैं तो फिर ये चिड़िया आकर खाती है और फिर चट्टी के रूप में सब आके मिट्टी में निकल आता है, मिल जाता है। तो इसलिए बाइबल में कहा गया है, इतना गौरव क्यों रखते हो ये शरीर के बारे में, ये शरीर तो मिट्टी बन जाएगा, भूलो मत। पर हमारा ज्ञान यह है शास्त्रों का, शरीर मिट्टी बन जाएगा पर आत्मा जो है वो सनातन है, आत्मा का आत्मा नश्वर नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचित, ना इसका जन्म होता है ना ही अंत आता है। तो भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि तपस्या का पालन करो, इसके बदले में आपको सुख प्राप्त होगा जो कि कभी समाप्त नहीं होगा। तो हम आप सबको वो उपदेश देना चाहते हैं जिसके द्वारा आपको असली सुख प्राप्त हो, नकली सुख नहीं। भौतिक समाज में हम सुबह से रात तक प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, सुबह से रात तक व्यस्त होते हैं। जैसे आजकल आपको अब बड़ी टेक्नोलॉजी के कारण ये सुविधा प्राप्त हो गई है कि घर में बैठे बैठे आप सारी दुनिया के टेलीविजन देख सकते हो, सच बात है। सुना जाता है कि कई लोग तो पूरी रात सोते ही नहीं, एक सिनेमा के बाद दूसरा सिनेमा देखते हैं। हाँ कहते हैं पहले तो 40 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ती थी, अब तो मुफ्त है। मुफ्त नहीं है, आपका जो समय है उसकी कीमत आप कभी नहीं लगाते, है कि नहीं, समय की कीमत नहीं लगाते। 10 रुपए बचाने के लिए 10 दुकानों में जाओगे भाव पूछने को, पर समय का दुरुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग उसकी चिंता नहीं है। चाणक्य पंडित जी ने कहा है, आयुष्य कशान एको पीना लबया स्वर्ण खोती हुई। समय इतनी कीमती चीज है कि सारे विश्व के धन को आप इकट्ठा कर लो, पर अगर आपने 1 मिनट का भी दुरुपयोग किया है तो उसका वापस खरीद कर नहीं ला सकते। तो आप सबको भूलना नहीं चाहिए कि ये जो मानव शरीर है, जो समय है, ये बहुत कीमती चीज है और इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो असली सुख प्राप्त करने का साधन क्या है, परम भगवान की शरण लेना। और परम भगवान की शरण लेना हम सब का कर्तव्य है, और जो भक्त हैं भगवान के उनका ये कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति को भगवान का यथारूप संदेश दिया जाए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता को प्रकाशित किया तो भगवद गीता यथारूप के नाम से प्रकाशित किया। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, स्वामी जी ये भगवद गीता यथारूप दूसरी भगवद गीता में क्या अंतर है? तो हम ये समझाते हैं और प्रभुपाद जी भूमिका में समझाते हैं कि अगर आप भी गीता का लाभ उठाना चाहो तो उसी विचारधारा से स्वीकार करना चाहिए जिस विचारधारा से अर्जुन ने भगवान के संदेश को स्वीकार किया। गुरुजी सरल उदाहरण देते थे कि अगर आप डॉक्टर की दवाई का उपयोग का लाभ उठाना चाहो तो जिस डॉक्टर के नुस्खे के अनुसार लेना पड़ेगा, अगर बीच में पानी डाल दोगे तो फिर उस दवाई का असर थोड़ी पड़ेगा। उसी प्रकार अनेक व्यक्तियों ने गीता का अनुवाद किया है, पर अफसोस की बात यह है कि क्योंकि उन्होंने असली भाव नहीं प्रकट किया, हम इस गीता के द्वारा लाभ नहीं उठा रहे। पर इस भगवद गीता यथारूप का अनुवाद आज विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है और लाखों लाखों की संख्या में लोग गीता को पढ़कर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आज विश्व के हर कोने में इसका उनका केंद्र है, जहाँ जैसे कि आज आपको गीता का उपदेश दिया जा रहा है, भक्त द्वारा ये उपदेश दिया जाता है। तो आप सबके हम आभारी हैं कि आप सब यहाँ आए हो, आप सब राधा गिरधारी जी के मंदिर आते रहते हो, आप सब राधा गिरधारी जी और साथ में जगन्नाथ सुभद्रा बालराम जी और साथ में गौनिताय की शुभकामनाएं आप स्वीकार कीजिएगा। पर आप सबसे ये निवेदन है कि आप इस शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताइएगा, ये हरि नाम को अपनाइए। हरि नाम ही असली धन है। एक समय एक ब्राह्मण ने शिव जी को प्रसन्न किया, जिसके द्वारा उन्हें एक वर मिला। क्या जाओ वृंदावन में। ब्राह्मण गरीब था, धन का इच्छुक था, तो शिव जी ने कहा जाओ, एक संत है वो तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देगा। ब्राह्मण वृंदावन में आए, संत ने एक परस पत्थर दे दिया जिससे हर चीज सोना बन गई। आपके जवेरी बाजार में ऐसा परस पत्थर मिलता है? नहीं मिलता। जवेरी बाजार नाम तो है, अच्छा नहीं मिलता। तो इस संत के पास ये परस पत्थर था, जान लगाओ सोना बन जाता था। तो ये गरीब ब्राह्मण बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही खुश, सारी दुनिया को दिखाने लगा, देखो मेरा परस पत्थर हर चीज को सोना बना देता है। सबने पूछा कैसे प्राप्त हुआ, अगर आज किसके पास हो ऐसा परस पत्थर आए तो उसका कत्ल ही कोई कर दे वो छीनने के लिए, है ना। खैर, तो उन लोगों ने उनसे पूछा कैसे मिला आपको ये परस पत्थर। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जब पूछा तो इन्होंने सुनाया कि मैंने तपस्या की, तपस्या के द्वारा मुझे वर प्राप्त हुआ, फिर मैं वृंदावन में गया, मैंने संत से कहा कि मुझे धन चाहिए, मैं धनी बनना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है ये परस पत्थर ले लो। तो उसके मित्र ने पूछा कहां रखा था ये परस पत्थर उस संत ने। तो उन्होंने कहा कचरे के डब्बे के नीचे। तो उनके मित्र ने कहा कचरे के डब्बे के नीचे कोई कीमती वस्तु रखता है, जरूर उस संत के पास इस परस पत्थर से ज्यादा कीमती कोई वस्तु होगी, वो जाके मांगो। तो उसने कहा ये बात तो जचती है, अगर इस परस पत्थर को उस संत कचरे के डब्बे के नीचे रख रहा है तो जरूर कोई ज्यादा महंगी वस्तु भी कोई और स्थान पर रखी होगी। तो वापस लौटे और भीख मांगी, कहा कि अवश्य ही से ज्यादा कीमती कोई वस्तु होगी आपके पास। हाँ, तो फिर संत ने कहा चाहिए तो फेंक दो परस पत्थर को, पर अगर आपके पास है परस पत्थर तो आप रखे रहो। पर साथ में कहा ये हरि नाम को अपना। तो ये हरि नाम जो है ये असली धन है। पर आप कहोगे पर ये हरि नाम के द्वारा हम ओपल गाड़ी थोड़ी खरीद सकते हैं, हमें तो हरि नाम के द्वारा हम अमेरिका की टिकट थोड़ी खरीद सकते, उससे ज्यादा खरीद सकते हैं। आप वैकुंठ धाम की टिकट खरीद सकते हो, वैकुंठ धाम में तो आपको ओपल गाड़ी की जरूरत भी नहीं होगी, वहाँ कोई बीमारी नहीं, रोग पीड़ा नहीं, कुछ नहीं, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, आप आनंद के साथ भगवान की सेवा में जुड़े रहोगे। तो आप सबसे यही विनती है कि आप चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को अपनाइएगा। हमने आपको आरंभ में कहा था कि ये भक्ति योग के माध्यम का उपयोग हर व्यक्ति कर सकता है, आप घर रहते हुए भी कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु जी ने इतना सरल बना दिया है, एक हरि नाम का जाप करो, दूसरा भागवत गीता भागवतम का अध्ययन करो, तीसरा भक्तों की संगत का लाभ उठाओ, चौथा भगवान के आर्चा विग्रह का की उपासना करो, और पांचवा अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण रखो। इन नियमों का पालन कोई भी कर सकता है, कोई है इस सभा में जो नहीं कर सकता, सच बोलिए। हाँ, कोई हाथ नहीं उठा रहा, आप शर्मा रहे हो या सचमुच? मुझे लगता है कि यहाँ के मीना रोड के मंदिर के भक्तों ने आपको अच्छी संगत दी है, अच्छी शिक्षा दी है, इसलिए आप सब महात्मा बन गए हो। ये श्लोक तो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस श्लोक में तो भगवान कहते हैं जो महात्मा है उनको भी यज्ञ दान तपस्या का पालन करना चाहिए। तो हमें पता था कि मीना रोड में सब भक्त हैं। तो आप सब इसका उपयोग कीजिएगा। हाँ, हरे कृष्णा।